प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है।
प्रभु का जीव वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन। प्यासी आत्मा की भी तृप्ति है यही वचन। स्वर्गीय जीवन रोटी, आंखों की ये ज्योति, ये सत्य वचन, ये जीवित वचन, सबसे उत्तम ज्ञान यही है। आओ सुने सत्य वचन।
कार्यक्रम सत्यवचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना कितना लाभप्रद है, ये हमारे जीवन के लिए सही दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसके साथ आत्मिक विकास व उन्नति के लिए भी अनिवार्य है। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में हम भाग लें, किंतु इससे पूर्व की आज का ये अध्ययन आरम्भ करें, मन की तैयारी के लिए सुनिए एक मधुर गीत।
यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको हमारा नमस्कार। कहिए मित्र, कैसे हैं आप? हमें आशा है आप प्रभु की दया से कुशल हैं और आज के सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इन दिनों हम अपने बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में पवित्र बाइबल अध्ययन की रूपरेखा, उसके मार्ग दर्शिका के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में हमने दो मुख्य विषयों की चर्चा की, एक है प्रकाशन और दूसरा प्रेरणा। पिछले कार्यक्रम में हमने प्रकाशन के विषय में अध्ययन किया। प्रकाशन से हमारा तात्पर्य है परमेश्वर ने मनुष्य से बातचीत की, अर्थात परमेश्वर मनुष्य से बोला। और तब प्रकाशन के पश्चात आता है प्रेरणा। सो आज हमारा विषय होगा प्रेरणा। ये प्रेरणा जो परमेश्वर के प्रकाशन की गारंटी है, प्रेरणा परमेश्वर के प्रकाशन की गारंटी है। दो व्यक्ति प्रेरित पौलुस तथा प्रेरित पत्रस अपनी अंतिम पत्रियों में इस प्रकार बताते हैं। आइए मेरे साथ अपनी पवित्र बाइबल में देख लीजिए। प्रेरित पौलुस तिमोथियस की दूसरी पत्री में उसके तीसरे अध्याय के 16 और 17 पदों में इस प्रकार से बताते हैं। दूसरा तिमोथियस उसका तीसरा अध्याय 16 और 17 पद, और बचपन ही से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा तुझे उद्धार पाने के लिए बुद्धि दे सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और शिक्षा, ताड़ना, सुधार और धार्मिकता की शिक्षा के लिए उपयोगी है। 17वें पद में लिखा है, जिससे कि परमेश्वर का भक्त प्रत्येक भले कार्य के लिए कुशल और तत्पर हो जाए। यहां परमेश्वर का वचन और उसके महत्व के विषय में हम जान सकते हैं। ध्यान दीजिए, समस्त पवित्र शास्त्र यानी परमेश्वर का संपूर्ण पवित्र वचन बाइबल, समस्त पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये परमेश्वर की प्रेरणा द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रेरणा का अर्थ है परमेश्वर ने उसमें जीवनदायक श्वास फूंकी है। जब हम प्रेरणा की चर्चा करते हैं तो प्रेरणा का अर्थ होता है कि परमेश्वर ने अपने वचन में जीवनदायक श्वास को फूंका है। परमेश्वर ने इन लोगों के द्वारा कुछ कहा है। परमेश्वर प्रेरित पौलुस के द्वारा वही सब कुछ कहता है जो वास्तव में वो कहना चाहता था, और प्रेरित ने उसमें अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ा है। यही प्रेरणा है। प्रेरणा को आप स्पष्ट रूप में समझ लीजिए कि परमेश्वर ने जो कुछ किसी व्यक्ति के द्वारा, अपने प्रेरितों के द्वारा, नबियों के द्वारा जो कुछ भी कहना चाहा है उसको वास्तविक रूप में कहा है, और उन लोगों ने अपनी ओर से उसमें कुछ नहीं जोड़ा है। इसी को परमेश्वर की प्रेरणा कहते हैं। और यहां पर प्रेरित पौलुस तिमोथियस की पत्री में स्पष्ट करते हैं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र कुछ विशेष प्रकार का क्षेत्र नहीं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और यह शिक्षा, ताड़ना, सुधार और धार्मिकता की शिक्षा के लिए उपयोगी है। प्रेरित पत्रस अपनी दूसरी पत्री के प्रथम अध्याय के 21वें पद में इस बात को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, परंतु लोग पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। यहां प्रेरित पत्रस परमेश्वर के वचन की सत्यता और उसकी पवित्रता को स्पष्ट करते हैं, और वो कहते हैं कि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से नहीं हुई, परंतु लोग पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। अब यहां ये बात महत्वपूर्ण है कि पवित्र लोग प्रेरित किए गए, उभारे गए। किसके द्वारा? परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा। बिशप वेस्टकॉट एक महान व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने कहा है कि विचार शब्दों के साथ संयुक्त होना अनिवार्य है। विचारों का शब्दों के साथ संयुक्त होना अनिवार्य है। जिस प्रकार की प्राण शरीर के साथ संयुक्त रहता है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विचार और शब्दों को एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ जाना चाहिए जिस प्रकार से प्राण शरीर के साथ जुड़ जाता है और मनुष्य एक जीवित प्राणी के रूप में चलता फिरता है। उसी प्रकार से परमेश्वर की ओर से दिए गए वचन, परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा बोले गए वचन, उनमें जीवन होता है। वो वास्तविकता और परमेश्वर से इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि वो जीवनदायक वचन बन जाता है। और इस प्रकार ये विचार नहीं हैं जो प्रेरित होते हैं, वरन ये शब्द हैं जो प्रेरित हुए हैं। मनुष्य नाना प्रकार के विचार कर सकता है और उन विचारों से आशीष नहीं मिलती। परमेश्वर विचारों के द्वारा बात नहीं करता, परमेश्वर शब्द है और वो शब्द के द्वारा बात करता है। उसके शब्द में जीवन है। यूहन्ना प्रेरित अपने सुसमाचार के प्रथम अध्याय के प्रथम पद में स्पष्ट बताते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। और आगे वो कहते हैं कि यही वचन देहधारी हुआ। तो इस प्रकार से विचार नहीं वरन शब्द प्रेरित होते हैं जो जीवनदायक आत्मा बनते हैं, जीवनदायक कार्य करते हैं। एक झक्की प्रकार की महिला की एक कथा है। वो संगीत प्रेमी थी और बहुत अच्छा गाती थी। वो अपने संगीत शिक्षक से प्रशंसा के शब्द सुनने की आशा रखती थी और एक बार उसने एक विशाल संगीत समारोह में गीत गाया। समारोह के पश्चात वो अपने गुरु की प्रतिक्रिया जानने की इच्छुक थी, किंतु वह उसे बधाई देने आया ही नहीं। वो बड़ी निराश हुई, किंतु उत्सुक भी हुई ये जानने के लिए कि उसके गुरु ने, उसके अध्यापक ने उसके विषय में क्या कहा है। उसने अपने मित्रों व प्रशंसकों से पूछा कि मुझे ये बताओ कि मेरे गुरुजी मेरे गायन के विषय में क्या कह रहे थे। एक अच्छे मित्र ने कहा, वो ये कह रहे थे कि उसकी आवाज स्वर्गीय थी। गायिका ने उत्तेजित होकर पूछा, फिर से बताओ, ठीक ठीक बताओ, जैसा उन्होंने कहा है ठीक वही शब्द बताओ। तब उस मित्र ने बताया कि गुरुजी कह रहे थे कि उसका शोर पार्थिव नहीं था। निसंदेह इन दोनों शब्दों में बहुत बड़ा अंतर है। उसकी आवाज स्वर्गीय थी तथा उसका शोर पार्थिव नहीं था। वास्तव में शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, विचार नहीं। मेरा विश्वास कीजिए, पवित्र शास्त्र बाइबल के शब्द प्रेरित हुए हैं, केवल विचार मात्र नहीं वरन शब्द प्रेरित हुए हैं। उदाहरण स्वरूप, शैतान झूठ बोलने के लिए प्रेरित नहीं हुआ, किंतु पवित्र बाइबल बताती है कि उसने झूठ बोला। मित्रवर, ये शब्द ही हैं जो प्रेरित होते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुधा कहा है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा कहा गया है। प्रभु के दास मूसा निर्गमन की पुस्तक के 20वें अध्याय में लिखते हैं, तब परमेश्वर ने ये वचन बोले। दूसरे शब्दों में, यह परमेश्वर था जो बोला और जो कुछ वो बोला उसे प्रभु के दास ने लिख दिया। मित्रवर, परमेश्वर द्वारा उपयोग में लाया गया प्रत्येक शब्द हमें आनंदित करता है, यहां तक कि उसके बहुवचन तथा एक वचन के प्रयोग से भी हम विशेष आशीष प्राप्त करते हैं। पवित्र परमेश्वर इस बाइबल नामक पुस्तक के द्वारा हमारे हृदयों तथा हमारे जीवनों से बोलता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के द्वारा प्रेरित किया गया। और जैसा कि हमने प्रभु के वचन से पढ़ा कि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, परंतु लोग पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा परमेश्वर की ओर से बोलते थे। सो हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अपने द्वारा प्रेरित किया हुआ वचन हम तक पहुंचाया है कि हम उसको पढ़ें, अध्ययन करें और परमेश्वर के विषय में पूर्ण और उचित जानकारी प्राप्त कर सकें और परमेश्वर की बातों को सुन सकें, उस पर ध्यान कर सकें। तब यहां पर तीसरा विशेष गुण है प्रबोधन, स्पष्टीकरण। और इसका अर्थ है कि जबकि हमारे पास परमेश्वरीय और मानवीय पुस्तक है जो परमेश्वर के प्रकाशन तथा प्रेरणा द्वारा मानव द्वारा लिखी गई है, किंतु हमारे लिए स्पष्ट करने का कार्य, हमें समझाने का कार्य, इस पर प्रकाश डालने की सेवा पवित्र आत्मा द्वारा होती है। इस बात को समझिए, जबकि परमेश्वर ने हमको एक परमेश्वरीय, मानवीय और अपने प्रकाशन तथा प्रेरणा द्वारा लिखी गई पुस्तक को हमारे लिए रखा है, किंतु इस पुस्तक पर प्रकाश डालने का कार्य, इसकी व्याख्या करने का कार्य, इसको स्पष्ट करने का कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। पवित्र आत्मा ही इस वचन को स्पष्ट करता है, इस पर प्रकाश डालता है, इसकी व्याख्या करता है। पवित्र आत्मा ही हमारे हृदय तथा मस्तिष्क को खोलता है, तब हम आत्मिक सच्चाइयों को समझ सकते हैं। यदि हमारी समझ में कुछ आया है तो यह पवित्र आत्मा का कार्य है। यदि आपने प्रभु के वचन का अध्ययन किया है, उसको पढ़ा है और आप कुछ समझ गए हैं या आपने कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, तो यह आपका प्रयास नहीं है, आपका परिश्रम नहीं है, यह परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जिसने इस कार्य में आपको सहायता प्रदान की है। प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों की मंडली को इस प्रकार लिखा, पहला कुरिन्थियों के दूसरे अध्याय के 7-11 पदों को हमारे साथ देखिए। यहां हम कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखे गए पौलुस के कथन को पढ़ते हैं। परंतु हम परमेश्वर के उस ज्ञान के रहस्य का वर्णन करते हैं, अर्थात उस गुप्त ज्ञान का जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिस ज्ञान को इस युग के शासकों में से किसी ने ना समझा। यदि वे समझ गए होते तो महिमा के प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। पर जैसा लिखा है, जिन बातों को आंख ने नहीं देखा और न कान ने सुना और जो मनुष्य के हृदय में नहीं समाई, उन्हीं को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। परंतु परमेश्वर ने उन्हें आत्मा द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातों को, यहां तक कि परमेश्वर की गूढ़ बातों को खोजता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य के विचारों को जानता है? केवल उस मनुष्य की आत्मा के जो उसमें है। इसी प्रकार परमेश्वर के आत्मा को छोड़ परमेश्वर के विचार कोई नहीं जानता। मित्रवर, हम अधिकांश बातों को आंखों से देखकर तथा कानों से सुनकर जानते हैं, किंतु पौलुस लिखते हैं कि कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें ना तो हमने आंखों से देखा और ना कानों से सुना। ऐसी बातें मस्तिष्क में भी नहीं समा सकती। तब आप इस संसार में उन्हें कैसे जान सकेंगे? उनके विषय में आपको ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? परमेश्वर का वचन यहां उत्तर देता है और वो कहता है, परंतु परमेश्वर ने उन्हें आत्मा द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातों को, यहां तक कि परमेश्वर की गूढ़ बातों को खोजता है। मित्रवर, ऐसी गुप्त बातों को परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही हम पर प्रकट करता है। पवित्र आत्मा ही को हमारा शिक्षक होना चाहिए। जब आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, उस पर ध्यान करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई मनुष्य या कोई अन्य सामर्थ्य शक्ति आपको सिखाने का कार्य ना करे, वरन पवित्र आत्मा ही आपका शिक्षक हो, क्योंकि परमेश्वर की बातों को वही आपके ऊपर प्रकट कर सकता है, अन्य कोई नहीं। आपको स्मरण होगा कि एक बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से अपने विषय में एक प्रश्न किया और प्रश्न था, लोग मुझे क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, और तब पतरस, जो शमौन भी कहलाता था, उसने जो उत्तर दिया वो पवित्र आत्मा का कार्य था। वहां एक महान रहस्य उजागर किया गया। आप भी मेरे साथ देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16:13-17 पद। इन पदों में एक महान रहस्य उजागर किया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16:13-17 पद यह इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया तो अपने चेलों से ये पूछने लगा, मनुष्य का पुत्र कौन है, लोग क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया, और अन्य यर्मिया अथवा नबियों में से एक। उसने उनसे कहा, पर तुम क्या कहते हो, मैं कौन हूं? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उससे कहा, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने इसे तुझ पर प्रकट नहीं किया, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जो कुछ सत्य है वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट होता है। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस और सब सुनने वालों पर स्पष्ट किया और इस बात को प्रकट किया कि ये बात मांस और लहू द्वारा अर्थात मनुष्य के द्वारा नहीं प्रकट हुई, किंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है उसने इस सत्य को पतरस के ऊपर प्रकट किया है। श्रोता, आज केवल परमेश्वर ही है जो पवित्र बाइबल को हमारे लिए वास्तविक बनाने के लिए खोलता है। हमको पवित्र बाइबल का अध्ययन करने के लिए परमेश्वर पर, उसके पवित्र आत्मा पर निर्भर होने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने पापियों के लिए अपना प्राण दिया। वो क्रूस पर चढ़ाए गए और कब्र में गाड़े गए, और तीसरे दिन वो मृतकों में से जीवित हुए। और उसी दिन जिस दिन वो जीवित हुए अर्थात प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, प्रभु यीशु मसीह इमाउस के मार्ग पर जाते हुए 2 व्यक्तियों के साथ साथ चल दिए। ये दोनों मसीह यीशु की मृत्यु तथा पुनरुत्थान की बातों में उलझे हुए थे। मसीह यीशु ने स्वयं उनकी समस्या का समाधान किया। वो उनके बीच में आकर उपस्थित हो गए और उनसे बातचीत की और उनके समक्ष संपूर्ण सत्य को प्रकट कर दिया। आइए इस विषय में मेरे साथ देखिए लूका रचित सुसमाचार उसका 24:13-35 पद। इन पदों में इस प्रकार से लिखा है, देखो उसी दिन उनमें से 2 व्यक्ति इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर था। वे इन सब घटनाओं के विषय में बातें करते हुए जा रहे थे। ऐसा हुआ कि जब वे परस्पर बातें तथा विचार विमर्श कर रहे थे तो यीशु स्वयं वहां आकर उनके साथ चलने लगा, परंतु उसे पहचानने को उनकी आंखें बंद कर दी गई थीं। उसने उनसे कहा, तुम चलते हुए परस्पर ये सब क्या बातें कर रहे हो? और वे उदास होकर खड़े रह गए। उनमें से एक ने, जिसका नाम क्लियोपास था, उसे उत्तर दिया, क्या तू ही अकेला ऐसा व्यक्ति यरूशलेम में आया हुआ है कि इन सब बातों से जो इन दिनों यहां हुई अनजान है? उसने उनसे कहा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब मनुष्यों की दृष्टि में कार्य और वचन में सामर्थ्य नबी था, और हमारे मुख्य याजकों और अधिकारियों ने उसे किस प्रकार पकड़वा कर मृत्यु दंड के योग्य ठहराया और उसे क्रूस पर चढ़ाया। परंतु हम तो ये आशा कर रहे थे कि वही इसराइल को छुड़ाने वाला व्यक्ति है। वास्तव में इन सब बातों की अपेक्षा इन घटनाओं को घटित हुए आज 3रा दिन हो चुका है, परंतु हमारे साथ की कुछ स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है। जब वे प्रातःकाल तड़के कब्र पर गईं और उसके शव को नहीं पाया तो ये कहते हुए आईं कि हमने स्वर्गदूतों का भी दर्शन पाया جنہوں نے کہا کہ وہ جیوت ہو گیا ہے. جو ہمارے ساتھ تھے ان میں سے کچھ قبر پر گئے اور اس بات کو جیسا استریوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا, پرنتو انہوں نے اسے نہیں دیکھا. تب اس نے کہا, ہے نربدھیو, اس نے ارتھات پربھو یشو مسیح نے, تب اس نے کہا, ہے نربدھیو, نبیوں نے جو باتیں کہیں ان سب پر وشواس کرنے میں متی مند لوگ ہو. کیا مسیح کے لیے یہ آوشک نہ تھا کہ یہ سب دکھ اٹھائے اور اپنی مہما میں پرویش کرے؟ تب اس نے موسا سے پرارمبھ کر کے سب نبیوں اور سمست پوتر شاستر میں سے اپنے سمبند کی باتوں کا ارتھ انہیں سمجھا دیا. جب وہ اس گاؤں کے نکٹ پہنچے جہاں جا رہے تھے تو اس نے ایسا دکھایا مانو کہ آگے بڑھنا چاہتا ہو. انہوں نے آگرہ کر کے کہا, ہمارے ساتھ ٹھہر جا کیونکہ سندھیا ہو رہی ہے اور دن لگ بھگ ڈھل چکا ہے. وہ ان کے ساتھ ٹھہرنے کے لیے بھیتر گیا. تب ایسا ہوا کہ جب وہ ان کے ساتھ بھوجن کرنے بیٹھا تو اس نے روٹی لے کر دھنیواد دیا اور توڑ کر انہیں دینے لگا. تب ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اسے پہچان لیا, پر وہ ان کی درشٹی سے اوجھل ہو گیا. انہوں نے ایک دوسرے سے کہا, جب وہ مارگ میں ہم سے باتیں کر رہا تھا اور ہمیں پوتر شاستر کا ارتھ سمجھا رہا تھا تو کیا ہمارے ہردے اتیجت نہیں ہو رہے تھے؟ اسی گھڑی وہ اٹھ کر یروشلم کو لوٹ گئے اور گیارہوں تتھا ان کے ساتھیوں کو ایکتر پا کر انہوں نے کہا, پربھو واستو میں جی اٹھا ہے اور شمعون کو دکھائی دیا ہے. اور وہ مارک کے اپنے انوبھووں کو اور یہ کہ روٹی توڑتے سمے ان کے دوارا وہ کیسے پہچانا گیا ہے. اس پرکار ہم دیکھتے ہیں کہ پرمیشور کا وچن ایک اسپشٹیکرن کا وچن ہے. پرمیشور نے ساری باتوں کو سوئم اسپشٹ کیا ہے اور اس لیے ہم پوتر بائبل کو پرمیشور کا وچن کہتے ہیں اور یہ وشواس کرتے ہیں کہ پرمیشور کی اور سے دیا گیا وچن ہے. اب انہیں وچنوں کے ساتھ پربھو آپ کو آشیش دے اور آپ کی سہایتا کرے. آمین.
ابھی آپ سن رہے تھے کاریکرم ستیہ وچن. پریہ شروتا, ہمیں وشواس ہے کہ اس کاریکرم کے دوارا آپ کو لابھ پہنچا ہوگا. ہم آشا کرتے ہیں کہ پرمیشور کے وچن نے آپ سے بات کی ہے اور اس کے دوارا آپ کو آتمک آشیش ملی ہے. یدی آج کے کاریکرم سے سمبندھت آپ کے ہردے میں کوئی پرشن یا سندیہ ہے تو آپ ہمیں اس پتے پر اوشیہ لکھ کر بھیجیں. اس وشے میں हम आपकी पूरी पूरी सहायता करेंगे. हमारा पता है, कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा. पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा. तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है. अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी. तब तक के लिए आज्ञा दीजिए. नमस्कार.